दिन गुरुवार तारीख 4 जून दिन भर के साथ में निखिल रंजन। मणिपुर में सेना के काफिले पर चरमपंथियों का हमला, कम से कम 17 सैनिकों की मौत। बिहार में 17 साल पुराने गोलीकांड में 2 पूर्व सांसद और 1 विधायक को 10 साल की जेल। बारिश कम हुई तो भी नहीं बढ़ेगा राशन का बिल, वित्त मंत्री का दावा।
पिछले वर्ष तो जो इस वर्ष की प्रेडिक्शन आई है उससे भी कम बरसात हुई थी और काफी विलंब के साथ हुई थी, लेकिन हमने कीमतें तब भी नहीं बढ़ने दी थी।
व्यापम घोटाले से जुड़े संदिग्ध लोगों की मौत पर उठे सवाल, लेकिन मुख्यमंत्री ने किया पाक साफ होने का दावा।
शिवराज मर जाए कभी गलत काम को सोच भी नहीं सकता, मेरा जीवन पूरी तरह से पारदर्शी है, मेरे मन में कोई गलत बात होती तो ये तो मामला सामने आता ही नहीं।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। मणिपुर में सेना के जवानों पर घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 17 जवानों की मौत हो गई है। मणिपुर पुलिस के मुताबिक सेना का ये काफिला राजधानी इम्फाल की तरफ जा रहा था। हाल के सालों में इस क्षेत्र में सेना पर हुआ ये सबसे गंभीर हमला है। म्यांमार की सीमा से लगते इस राज्य में कई चरमपंथी गुट सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इंटरनेट कंपनी गूगल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी है। गूगल सर्च में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दुनिया के 10 सबसे बड़े अपराधियों की सूची में आ रही थी। कंपनी ने कहा कि इंटरनेट पर जिस तरह तस्वीरों का ब्यौरा लिखा जाता है उसके आधार पर पूछे गए सवालों के हैरतअंगेज नतीजे निकल सकते हैं। जब कई भारतीय राजनेताओं और समीक्षकों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर चिंता जताई तो गूगल ने तत्काल इस पर माफी मांगी। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से निकल जाने की संभावना पर वे ज्यादा फिक्रमंद नहीं हैं। बर्लिन में बीबीसी से एक इंटरव्यू के दौरान चांसलर मर्केल ने कहा कि उनका मानना है कि ऐसे हालात बनाए जा सकते हैं ताकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य बना रहे। डेविड कैमरन जिन चीजों की बात कर रहे हैं उनमें से कुछ का तो मैं समर्थन कर सकती हूँ। कुछ मुद्दों पर मतभेद है, ये चिंतित होने वाली बात नहीं है, बल्कि इस तरफ काम करने और ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत है जिससे ब्रिटेन यूरोपीय संघ का साथ के साथ रहे। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। घाना की राजधानी अक्रा में एक पेट्रोल पंप में विस्फोट हो जाने से लगभग 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस ने इस इलाके की नाकाबंदी कर दी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हादसे से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। जबरदस्त बारिश से राजधानी अक्रा का बड़ा हिस्सा पहले ही डूबा हुआ है, मकानों में पानी भर गया है और कारें बह गई हैं। सैकड़ों लोग ऑफिस की इमारतों में फंसे हुए हैं। राष्ट्रपति जॉन महामा ने लोगों से शांत रहने की अपील की है और जान माल के इस नुकसान को दुखद बताया है। ब्रिटेन के खेल मंत्री जॉन विटिंगडेल ने कहा है कि अगर फीफा में भ्रष्टाचार के सबूत मिलते हैं तो फुटबॉल विश्व कप 2018 और 2022 की मेजबानी के लिए नए सिरे से प्रयास करने की स्थिति बन सकती है। फीफा ने इन टूर्नामेंट्स की मेजबानी के लिए रूस और कतर को चुना था। अमरीकी और स्विस अभियोजक इस बात की जाँच कर रहे हैं कि निविदा चयन की ये प्रक्रिया उचित थी या नहीं। खेल मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन एक बार फिर फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए निविदा देगा। 2018 का विश्व कप आयोजित करने की ब्रिटेन की निविदा को मंजूरी नहीं मिली थी। अफगानिस्तान की सेना का कहना है कि तालिबान के कम से कम 10 सदस्यों का उसके प्रतिद्वंदी गुट आईएस ने सर कलम कर दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। bbchindi.com और मोबाइल पर भी। आज सुबह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के चंदेल जिले में सेना के काफिले पर चरमपंथियों के हमले में कम से कम 8 सैनिकों की मौत हो गई, 17 सैनिकों की मौत हो गई और कई सैनिक घायल भी हुए हैं। सैनिक डोगरा रेजिमेंट के हैं और काफिला राजधानी इम्फाल से चंदेल की ओर रास्ता साफ कराने के लिए जा रहा था। इस मामले पर और जानकारी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की स्थानीय पत्रकार डेविड मनोहर से।
आज सुबह 6 बजे करीबन 6 बजे के आसपास हुआ है, यानी कि आर्मी 3 ट्रक पे आया है और ये उग्रवादी ने उसमें हमला किया के बाद में 3 ट्रक जो पूरा आग जला हुआ है। एनुपल पुलिस के मुताबिक कम से कम 8-9 घायल पूरा जला हुआ सिपाही लोग देख पा रहा है और ये जो टेनोपल पुलिस स्टेशन जो करीबन 30 किलोमीटर बाहर एक गांव है, उसका नाम है पारोलान विलेज, चंदेल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। और डोगरा रेजिमेंट का एक उसका यूनिट है उधर पे, करीबन उधर ही 15 किलोमीटर जाकर ये जो घटना जो हुआ है वही साइड पे।
हमले में क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं और क्या उनकी स्थिति अभी कहाँ है, उन्हें कहाँ भर्ती कराया गया है?
कम से कम 15 आर्मी लोग घायल हो चुका है और ये हेलीकॉप्टर में लिफ्ट किया है सुबह 10 बजे, करीबन 10 बजे से शाम का 2 बजे तक तो एयर हेलीकॉप्टर लिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पे, और घायल लोग को आर्मी हॉस्पिटल लईमखोंग में ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए।
ये जो इलाका है वो कैसा इलाका है, क्या यहाँ पहले भी इस तरह के कोई हमले हुए हैं और क्या ये बहुत दूर का इलाका है?
हाँ, ये जगह अभी चांदेल इम्फाल से चांदेल ये मोरे जाने रास्ता में है, बॉर्डर टाउन है, ये पूरा छनछान जगह है, वो इम्फाल से करीबन 6 किलोमीटर दूर है। चांदेल से तेनुपल से थोड़ा आगे जा 30 किलोमीटर अंदर जाकर तेनुपल पुलिस स्टेशन से परोलेम को जाने के लिए 30 किलोमीटर दूर है। नई सड़क और रास्ता ठीक नहीं है उधर पे। ये जगह अभी पूरा सुनसान जगह है, ये आर्मी लोग पासने लोग इम्फाल के साइड पे आ रहे हैं।
इस काफिले में कितने सैनिक थे और बाकी लोगों की क्या स्थिति है?
पुलिस के जानकारी के मुताबिक एक ट्रक के अंदर में कम से कम 15 या 20 सैनिक बैठा है, तो लगभग ये उसके एम्बुस के साइड में अभी 3 गाड़ी है, पूरा 3 ट्रक आग के जला हुआ है, तो कम से कम 30 के ऊपर में आर्मी पर्सनल है।
क्या पता चल सका है कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने हमला किया और उनका क्या मकसद?
तो उस तरह में 2 संगठन है, ये एक तो यूनिलेव है, एक तो पीएलए है, तो उसके दोनों के बीच में दोनों के अंदर में किसने किया है अभी तक क्लेम नहीं हो रहा है।
इम्फाल से स्थानीय पत्रकार डेविड मनोहर बता रहे थे मणिपुर के चंदेल जिले में सेना के काफिले पर हुए हमले के बारे में। मणिपुर में यह हमला जहां हुआ है वो दूरदराज का इलाका है और पिछले एक दशक में इसे सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। अब तक इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस और सेना भी इस बारे में दावे के साथ कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सुबीर भौमिक लंबे समय से उत्तर पूर्व भारत पर बारीकी से नजर रखते हैं। मैंने उनसे बात कर पूछा कि इस हमले के पीछे कौन हो सकता है।
बर्मा के साथ जो सीमा का इलाका है वहां पर इस तरह के हमले बढ़ते जा रहे हैं। गत माह भी नागालैंड के मौन जिले में असम राइफल्स के एक पलटन पर इस तरह का हमला हुआ जहां की 7 असम राइफल और 1 टेरिटोरियल आर्मी का जवान जो है वो मारा गया। आज ये जो हमला हुआ है इसमें भी खुफिया जो एजेंसीज हैं उनका ये मानना है कि खपलांग के साथ मणिपुर के जो कुछ ग्रुप्स हैं जो कि अभी तक सक्रिय हैं और जो कि भारत सरकार के साथ कोई बातचीत में बैठने को तैयार नहीं, ये लोग मिलकर इन्होंने एक हमला किया है। और उनका ये मानना है कि शायद ये एक नया पैटर्न आ रहा है कि अब कोई अकेला कोई गुट हमला नहीं कर रहा है, 2-3 ग्रुप जो मिलकर कर रहे हैं। और ये भी एक बात है कि गत माह इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ 6 ग्रुप के बीच और शायद इसमें मणिपुर के भी दूसरे कुछ ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, ये एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का बना है ताकि ये अपने आप में तालमेल जो है रख कर ये भारतीय फौज और अर्धसैनिक बलों पर हमला कर सके। और उसके बाद 5 हमले हो चुके हैं जिनमें की 2 हमले, एक तो वो गतमा जो हमला हुआ असम राइफल्स पे और आज का हमला अपने आप में बहुत बड़ा हमला है।
इस हमले में काफी बड़े भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और अभी तक इसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। और कहा यह भी जा रहा है कि हाल ही में सैनिकों के हाथों कथित रूप से एक महिला की मौत हो गई थी, तो हो सकता है कि उसके गुस्से में ये हमला किया गया हो। आप क्या वजह मानते हैं?
1-2 दिन पहले जो महिला का हत्या हो गया असम राइफल्स के जवानों ने गोली चलाया और साथ ही साथ एक गुस्से में आकर ये हमला, ये हम नहीं मानते हैं। ये इतना बड़ा हमला जब होता है तो उसके पीछे 15-20 दिन 1 महीने का प्लानिंग होता है, क्योंकि अपने आप में नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का हमला जब हुआ है और उसका बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये जाहिर हुआ है कि जिस हमले में 20-22 सैनिक मारे गए हैं कि 15-16 भी मारे गए हैं, तो उसका काफी देरी से प्लानिंग होता है, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज और वहाँ जो आर्मी बटालियंस हैं वो अपने आप में वो अलर्ट हो गए हैं, तो इसलिए ये लोग भी बड़े केयरफुली जाते हैं। और आज जो ये पलटन गया था ये रोड ओपनिंग पलटन था, यानी कि वो रास्ता को सिक्योर करके वहाँ ट्रैफिक ओपन करने के लिए ये गया हुआ था, बट ये एक ऑर्गेनाइज्ड एम्बुश है साइट सिलेक्शन जो एम्बुश का है वो बड़ा चुनकर किया गया है।
वो जो इलाका है उस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताइए जहाँ ये हमला हुआ है।
ये बहुत ही रिमोट इलाका है और ये जो पहाड़ी रास्ता है ये काफी इसमें टर्निंग है, तो उस तरह का शार्प, एक बहुत शार्प टर्निंग के ऊपर ये हमला हुआ जहाँ की गाड़ी जो है वो स्लो हो जाता है। चार गाड़ी का कॉन्वॉय था तो दो गाड़ी में, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं इस तरह का, मैंने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, मशीन गन और असॉल्ट राइफल और मशीन गन तो यूज हुआ है पहले, बट रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दोनों डायरेक्ट हिट हुआ है। तो पहले दो गाड़ी में आग लग गया, उसीलिए कैजुअल्टी इतना हैवी हुआ है।
अभी पुलिस की कार्रवाई क्या चल रही है वहां पर, या फौज की क्या कार्रवाई चल रही है?
फौज की कार्रवाई चल रही है, वहां पुलिस जाकर खास कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत डिफिकल्ट एरिया का है। ये भी आपको बताएं कि पहले दो गाड़ी में जितने जवान थे वो ज्यादातर मारे गए या फिर बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं, पर जो बाकी दो गाड़ी थे उनके जवान जो है वो उतर कर उन्होंने रास्ते के साइड में, वो बड़े डिसएडवांटेज में थे क्योंकि वो नीचे थे, और जो ये पृथकतावादी जो ये लोग छापामार ये लोग ऊपर थे।
उत्तर पूर्व मामलों के जानकार सुबीर भौमिक बता रहे थे कि मणिपुर में जो हमला हुआ है उसके पीछे कौन हो सकता है।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
बिहार की एक जिला अदालत ने आज दो पूर्व सांसद और एक मौजूदा विधायक को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। ये तीनों उन 15 लोगों में शामिल हैं जिन्हें सीतामढ़ी जिला अदालत ने करीब 17 साल पुराने गोलीकांड में 2 जून को दोषी करार दिया था। इस बारे में पटना से सुनिए मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
करीब 17 साल पहले 11 अगस्त 1998 को सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के दफ्तर परिसर में हुई पुलिस फायरिंग में 5 लोग मारे गए थे। पुलिस ने तत्कालीन जिलाधिकारी रामनंदन प्रसाद के आदेश पर गोली चलाई थी। मरने वालों में तत्कालीन विधायक रामचरित्र राय भी शामिल थे। स्थानीय पत्रकार हेमेंद्र कुमार सिंह इस घटना को कुछ इस तरह याद करते हैं।
बाढ़ राहत एवं अन्य समस्याओं को लेकर के सैकड़ों लोग जो है समाहरणालय पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान यह मामला काफी हाई हो गया और लोगों ने रोड़ेबाजी, प्रशासनिक पदाधिकारी पर लोगों ने रोड़ेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसमें विवश होकर पुलिस ने डीएम के आदेश पर 8 चक्र गोलियां चलाई।
इस घटना के लिए सीतामढ़ी जिला अदालत ने 15 लोगों को 2 जून को दोषी करार दिया था, जबकि सबूत के अभाव में 40 लोग बरी कर दिए गए थे। दोषी करार दिए लोगों की सजा का ऐलान न्यायाधीश इरशाद अली ने आज किया। आज जिन दो पूर्व सांसदों को सजा सुनाई गई उनके नाम हैं नवल किशोर राय और अनवारुल हक। साथ ही सीतामढ़ी जिले के परिहार से वर्तमान विधायक राम नरेश यादव भी दोषियों में शामिल हैं। विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी दोषियों को मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। आज के फैसले के बारे में मामले के लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया।
11 अगस्त 1998 को सीतामढ़ी कलेक्टर पर हमला हुआ था, उसमें इन लोगों को नाजायज मजबा बनाकर सरकारी पदाधिकारियों को जख्म पहुंचाना, उनको उनके हत्या का प्रयास करना और गंभीर जख्म पहुंचाना, इन सभी कारणों से उनको सजा दी गई है, यही आरोप साबित हुआ है।
वहीं फैसले पर बचाव पक्ष के वकीलों में से एक बिमल शुक्ला का कहना है कि निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए बहुत से तथ्यों को नजरअंदाज किया है। अलग अलग आरोपों में अभियुक्त बनाए गए लोगों को एक जैसी सजा दी गई है। मनीष शांडिल्य, पटना।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि मैगी मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। नेस्ले को मैगी मामले की वजह से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। विवाद के बाद नेस्ले के शेयर्स में 11.5% की गिरावट आ चुकी है। दिल्ली के बाद अब गुजरात और जम्मू कश्मीर सरकार ने 30 दिनों के लिए मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे ब्यौरे के साथ दिल्ली से वैभव श्रीवास्तव।
मैगी पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और नेस्ले कंपनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि मैगी मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी।
और इसमें दो दो आता है, एक तो अनफेयर ट्रेड और दूसरा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मामला।
उन्होंने कहा, हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI को सौंप दी है और प्राधिकरण अपनी जांच नेशनल कमीशन को सौंपेगा।
गंभीरता को देखते हुए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि हमने इसको रेफर कर दिया है लिखित रूप से।
इधर मैगी विवाद पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज कहा कि राज्यों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं जहां दिल्ली सरकार ने नेस्ले के मैगी नूडल पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, अब गुजरात और जम्मू और कश्मीर सरकार ने भी मैगी नूडल पर 30 दिनों का प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कंपनी को अपना पुराना स्टॉक बदलने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। नया स्टॉक बाजार में उतारने पर फिर से नमूने लेकर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली सरकार बाजार में मौजूद अन्य कंपनियों के नूडल की भी जांच कराएगी। इस पूरे विवाद पर नेस्ले की ओर से आई सफाई को स्वास्थ्य मंत्री ने खारिज कर दिया। केंद्र सरकार के केंद्रीय भंडार, आर्मी पुलिस की 3500 कैंटीन, बिग बाजार समेत फ्यूचर ग्रुप के स्टोर ने भी अपने यहाँ मैगी का स्टॉक हटा दिया है। फ्यूचर ग्रुप ने फैसला लिया है कि जब तक मैगी पर कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता वो अपने स्टोर में मैगी नहीं रखेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को इस मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा है। वहीं खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अफसर युद्धवीर सिंह मलिक ने कहा,
आई वॉन्ट वॉट इज द क्वान्टिटी देयर ऑफ, वॉट आर द वैल्यूज।
हमें अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट मिली है, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि मैगी में पाए गए पदार्थों की असल सामग्री कितनी है, और सभी रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम निर्णय ले पाएंगे। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अफसर युद्धवीर सिंह मलिक के शब्द। दिल्ली में मैगी के 10 नमूनों में लेड तय सीमा से ज्यादा मिला था। मसालों के 5 नमूनों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG पाया गया है, जबकि लेबल पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यूपी में लेड की मात्रा 2.25 की जगह 17.2 PPM पाई गई थी। पुलिस के साथ सेना की करीब 2500 कैंटीन में भी मैगी नहीं रखने का आदेश जारी हो गया है। इतना ही नहीं, सेना ने अपने जवानों को मैगी खाने से बचने की सलाह दी है। प्रतिवर्ष नेस्ले कंपनी देश भर में मैगी नूडल के करीबन 5.2 अरब पैकेट बेचती है, और कंपनी का 20% राजस्व मैगी की बिक्री पर आधारित है।
मैगी नूडल्स पर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे दिल्ली से वैभव श्रीवास्तव। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने इस साल बारिश कम होने का अनुमान जताया, और उसके बाद ये आशंका बढ़ी कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतें और बढ़ेंगी। लेकिन आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और कम बारिश का असर खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर नहीं होगा।
पिछले वर्ष तो जो इस वर्ष की प्रेडिक्शन आई है उससे भी कम बरसात हुई थी और काफ़ी विलंब के साथ हुई थी, लेकिन हमने कीमतें तब भी नहीं बढ़ने दी थी क्योंकि खाद्यान्न के जो भंडार हैं वो बहुत अधिक है हमारे पास, और इसलिए उनको बाजार में उतारना सरकार के पास एक ये साधन रहता है। और इस बार का जो ट्रेंड है वो स्पष्ट रूप से ये दिखा रहा है कि जो रीजनल स्प्रेड है इसमें थोड़ी बहुत कमी केवल उसी क्षेत्र में है जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आते हैं, जहां सिंचाई की सुविधा काफी है, और इसलिए बाकी 3 क्षेत्रों में बरसात इतनी कम नहीं दिखला रहे वो, और इसलिए इसका कोई खाद्यान्न की पैदावार पे बहुत असर पड़ने वाला है या उसकी उपलब्धि पे पड़ने वाला है ये नहीं है।
BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर, और मैं हूं निखिल रंजन, bbchindi.com और मोबाइल पर भी। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में संदिग्ध रूप से शामिल 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। विपक्षी कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इसमें 156 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी भी अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं। भोपाल से सुरेन याजी की ये रिपोर्ट सुनिए।
मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम, इस व्यापम घोटाले में सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और कर्मचारियों ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो पैसे लेकर जहां एक तरफ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपात्रों को दाखिला दिलाता था, वहीं दूसरी तरफ इसके द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भी धांधली करता था। इस घोटाले के चलते प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों के बजाय अपात्रों को फायदा मिला। अब यह घोटाला इस मायने में भी अलग साबित हो रहा है कि इससे जुड़े लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। STF ने यह बात कोर्ट में स्वीकार की है। इस मामले के लिए बनी SIT के प्रमुख चंद्रेश भूषण बताते हैं,
जांच के दौरान ये बात तथ्य सामने आया कि जो नाम आते हैं जांच में, जैसे कि छात्र बताता है कि मैंने तो भाई उसकी सहायता से ढूंढा था आदमी कि भाई इम्तिहान में परीक्षा में दूसरा, तो दलाल का नाम बताता है वो, तो पाया जाता है कि वो दलाल जब आगे चलते हैं तो मालूम चलता है कि वो मृत हो चुका है, तो मरे हुए आदमी का नाम है, तो ऐसे करीब 30 से अधिक होंगे जो नाम आए हैं जो मृत व्यक्ति हैं।
लेकिन विपक्षी कांग्रेस पार्टी कुछ अलग ही आंकड़े पेश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे बताते हैं,
मेरा 156 लोगों की डेथ हुई है व्यापम से जुड़े हुए पेरेंट्स हैं, भाई है, बहन है, पिताजी हैं, माताजी हैं और स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, डीन, ऑफिसर्स। नहीं, इसके पीछे गलत प्रेशर, एसटीएफ का प्रेशर में कई लोगों ने सुसाइड किया है, कई लोगों ने कि अब गए जेल, अब मर गए, अब मर गए, इस तरह से डर के सुसाइड किया है।
इस मामले में कई बड़े नाम सामने आए हैं जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी हैं। राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे भी आरोपी थे लेकिन उनकी भी मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं।
शिवराज मर जाए कभी गलत काम का सोच भी नहीं सकता। मेरा जीवन पूरी तरह से पारदर्शी है। मेरे मन में कोई गलत बात होती तो ये तो मामला सामने आता ही नहीं। ये मामला सामने लाने वाला शिवराज सिंह चौहान है। मैं इस मामले को सामने लेके आया, मैंने इस मामले की जाँच करवाई और नहीं तो जांच अगर सामने लाने नहीं होता होते तो आता ही नहीं, आज तक पता ही नहीं चलता किसी को।
व्यापम घोटाले में सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। यह गिरफ्तारियां न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी हुई हैं। लेकिन मामले से जुड़े लोगों की लगातार हो रही मौतें इस घोटाले को और भी पेचीदा बना रही हैं।
भोपाल से शुरेन नियाजी बता रहे थे व्यापम घोटाले में हो रहे से जुड़े संदिग्ध लोगों की मौत के बारे में। और अब वक्त है उसका जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है, यानी आपकी राय, आपकी चिट्ठियां।
आपकी राय, स्वीकार कीजिए। राजेश जोशी का नमस्कार।
और नमस्कार मेरा शालू यादव का भी।
तो शालू यादव, जब आपने अपना परिचय दे ही दिया है
जी,
तो पहली चिट्ठी मैं पढ़ता हूँ जो आपकी एक रिपोर्ट की तारीफ में लिखी गई है।
क्या बात कर रहे
हैं? ये चिट्ठी हमें भेजी है मलिकपुरा गांव गाजीपुर वाराणसी मंडल से। लिखने वाले हैं ऋषिकेश गुप्ता और सुनिए क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि आजकल एक और जहां स्मार्ट शहर एवं डिजिटल इंडिया जैसी संकल्पना सुर्खियों में है, वहीं पर शालू यादव की अलवर के ग्रामीण पृष्ठभूमि की शिक्षा और समाज की रिपोर्टिंग हमारे समक्ष कई चुनौतियों की तरफ इशारा करती है। इस रिपोर्टिंग के लिए शालू जी को हार्दिक धन्यवाद।
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये चिट्ठी लिखने के लिए समय निकाला और आपने वो रिपोर्टें सुनी। जी हाँ, डिजिटल भारत की बात जरूर होती है लेकिन गांव में जो एक डिजिटल क्रांति हो रही है उसकी बात कम ही होती है
लेकिन
और
आपने शुरुआत
हम वहां
की
से रिपोर्टें अब आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। अगली चिट्ठी है ग्राम ककोली जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। विष्णु शर्मा ने लिखी है ये चिट्ठी। लिखा है कि बीबीसी हिंदी सेवा के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रस्तुत अतीत की यादों के कार्यक्रम सुनकर मन उनका प्रसन्न हो गया। वो कहते हैं कि मैं 1980 से लगातार बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम सुन रहा हूं। जिस दिन बीबीसी नहीं सुन पाता तो ऐसा लगता है कुछ खो दिया जी। इन्होंने आगे लिखा है कि इन विशेष कार्यक्रमों में बीबीसी हिंदी सेवा बंद करने का आतंक और फिर सुबह शाम आधे आधे घंटे का कार्यक्रम शुरू करने के नाटक के बारे में क्यों नहीं बताया।
अरे बाप रे,
ये नाटक तो कमोबेश अब भी चल रहा है।
इतनी गहरी आलोचना, इतनी तीखी आलोचना विष्णु वर्मा जी। नाटक और आतंक, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपने किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। लेकिन सच ये है कि न कोई नाटक है और न कोई आतंक है। जो कुछ है वो श्रोताओं के सामने है। बीबीसी हिंदी के चारों कार्यक्रम आप सुनते हैं और चारों के नए नाम हैं, सुनते रहिए, मैं तो यही कहूंगा।
बिल्कुल जारी रहेंगे, कोई ऐसा आतंक नहीं है। ये हमें भेजा है शत्रुघ्न सिंह चौहान ने नवाबगंज उन्नाव से। इन्होंने लिखा है कि कल 26 तारीख की ये बात कर रहे हैं, दरअसल लेटर अभी आया है। उन्होंने उस सभा में रेहान फजल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में मोदी कार्यकाल के एक साल की उपलब्धि पर बनारस से एक अंग्रेज सज्जन के विचार सुने जो बहुत ही सटीक और बहुत ही निष्पक्ष लगे उन्हें। उन सज्जन के साथ साथ इंटरव्यू लेने वाले महोदय को बहुत धन्यवाद।
ये नितिन की बात कर रहे हैं, शायद नितिन श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं।
जी, नाम इन्होंने रेहान जी का लिखा है लेकिन मुझे याद है कि नितिन गए थे वाराणसी।
श्रीवास्तव गए थे वाराणसी। जी
जी, अगली चिट्ठी है ओम प्रकाश पाठक नगवा बलिया उत्तर प्रदेश से।
जी, बलिया से तो हमारे बहुत सारे
चार बिंदु लिखे हैं।
अच्छा, क्या लिखते हैं
पत्र में? सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि 75 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने पत्र भेजा था जो कि शामिल नहीं हुआ। राजेश, ये तो शिकायत कर रहे हैं पहले तो।
शामिल तो हो रहा है, आपके सामने हो रहा है।
अब फिर और सुनिए, कह रहे हैं कि मैंने एक और आलोचनात्मक पत्र भेजा था जो शामिल नहीं हुआ।
देखिए, ये मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं, हमारे श्रोता जानते हैं और आप भी जानती हैं कि अगर कोई श्रोता हमारी सही सीधी आलोचना करता है तो हम उस चिट्ठी को तो जरूर ही शामिल करते हैं। तारीफ की चिट्ठियों को कई बार मैं शामिल नहीं करता हूं।
लेकिन ये पूरी तरह से हताश नहीं है राजेश जी, मुझे ये कहना पड़ेगा। इन्होंने चौथी बिंदु में ये लिखा है कि आप मेरा पत्र शामिल ना करें लेकिन मैं पत्र लिखना बंद नहीं
करूंगा। क्या बात है, वाह, ये बहुत अच्छी
बात है। हमारे
बिल्कुल सभी श्रोताओं से मैं कहता हूं कि पत्र लिखना बंद न कीजिए आप, और हम कभी न कभी तो आपकी चिट्ठियां रेडियो में शामिल करेंगे ही।
अगली चिट्ठी है हरिकांत झा जी की। ये लिखते हैं कि बीबीसी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो श्रृंखला चली थी रेडियो पर, कहते हैं इस प्रस्तुति की चरम सीमा तब आ गई जब कैलाश जी ने कहा कि बीबीसी एक संगठन नहीं अपितु हम स्वयं ही बीबीसी थे।
हाँ बिल्कुल, मुझे भी याद है कैलाश बुधवार जो पुराने प्रसारक रहे बीबीसी के, उन्होंने ये कहा था कि जब हम काम करते थे तो बीबीसी संगठन के लिए नहीं बल्कि हम खुद को बीबीसी मानते थे। और शालू, मैं माफ कीजिएगा, आपके पास चिट्ठियां बहुत हैं लेकिन मेरी नजर गई घड़ी की सुइयों की तरफ और घड़ी हमें बता रही है कि अब हम श्रोताओं से इजाजत लें और पता बताएं
जी।
आप हमें चिट्ठी लिखें बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003 पर। ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
तो ये थी आपकी चिट्ठियां जो हमें बताती हैं कि हम अपनी कोशिशों में कितने कामयाब हो रहे हैं, कहां कितने नाकाम हो रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है खेल की खबरों का। खेल जगत की सारी हलचल को समेट कर राखी शर्मा स्टूडियो में आ चुकी हैं। राखी, बताइए आज क्या हो रहा है खेलों के मैदान में?
जी, सबसे पहले तो फ्रेंच ओपन की तरफ चल देते हैं क्योंकि महिलाओं का सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। एना इवानोविच सर्बिया की और चेक रिपब्लिक की लूसिया सेफरोवा के बीच, और पहला सेट लूसिया सेफरोवा ने जीत लिया है 7-5 से। विश्व नंबर 13 खिलाड़ी हैं, हालांकि विश्व नंबर 7 एना इवानोविच पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। दूसरे सेट में भी 3-2 से आगे चल रही हैं एना इवानोविच का जहां तक सवाल है। 2008 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुकी हैं, लेकिन वहीं 28 साल की लूसी सेफरोवा का ये सिर्फ दूसरा ही ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल है। तो देखते हैं कि मुकाबला कहां जाता है। फिलहाल तो बढ़त बनाई हुई है सेफरोवा ने, और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला महिला सिंगल्स का सेरेना विलियम्स का मुकाबला होगा 23वीं वरीयता प्राप्त स्विस खिलाड़ी टीमिया बासिंस्की से। 33 साल की सेरेना 2002 और 2013 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। वहीं 25 साल की बासिंस्की पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। बासिंस्की ने दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियन की एलिसन वान यू को हराया था। वहीं सेरेना सारा ईरानी को क्वार्टर फाइनल में हराकर अंतिम चार में पहुंची हैं। इसके अलावा आज पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए जिनमें अमेरिका के ब्रायन बंधुओं ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस जोड़ी ने इटली के सिमोन बोलेली और फेबियो फोगिनी को 6-3, 6-3 से हराया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में क्रोएशिया की इवान डोडी और ब्राजील के मार्सेलो मेलो की जोड़ी ने नीदरलैंड के जीन जूलियन और रोम के होरिया तेको को 6-3, 7-5 से हराया। इसके अलावा क्रिकेट का भी एक मुकाबला चल रहा है वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच है उसका आज दूसरे दिन का खेल जारी है। पहले दिन मेजबान वेस्टइंडीज की पूरी टीम 148 रन पर ढेर हो गई थी। साथ ही दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर 83 रन बना लिए थे। कैरेबियाई पारी को सस्ते में आउट करने में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज मिचेल जॉनसन और जोश हेजलवुड का अहम योगदान रहा था। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ और एडम वोक्स क्रीज पर मौजूद हैं।
बहुत शुक्रिया राखी इस पूरी खेल खबरों के बारे खबरों के लोगों तक पहुंचाने के लिए। और अगर आपके पास थोड़े से पैसे हों तो निवेश के लिए सबसे अच्छा साधन रहता है संपत्ति का बाजार, और कहाँ संपत्ति खरीदना अच्छा होगा ये आप जानना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। यहाँ सुन लेते हैं मुख्य समाचार पहले।
बीबीसी समाचार। मणिपुर में सेना के जवानों पर घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 17 जवानों की मौत हो गई है। इंटरनेट कंपनी गूगल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी है। गूगल सर्च में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दुनिया के 10 सबसे बड़े अपराधियों की सूची में आ रही थी। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से निकल कर जाने की संभावना पर वे ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। घाना की राजधानी अक्रा में एक पेट्रोल पंप में विस्फोट हो जाने से लगभग 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। ब्रिटेन के खेल मंत्री जॉन विटिंगडेल ने कहा है कि अगर फीफा में भ्रष्टाचार के सबूत मिलते हैं तो फुटबॉल विश्व कप 2018 और 2022 की मेजबानी के लिए नए सिरे से प्रयास करने की स्थिति बन सकती है। अफगानिस्तान की सेना के मुताबिक तालिबान के कम से कम 10 सदस्यों का उसके प्रतिद्वंदी गुट IS ने सर कलम कर दिया है। PBC समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। आज के दिन भर में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी रात 9:30 बजे घटनाचक्र में। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने। पूरी टीम के साथ निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।